अपठित काव्यांश। तो आज का हमारा विषय है अपठित काव्यांश। तो सबसे पहले हम इसमें अपठित का अर्थ जानते हैं कि अपठित होता क्या है। तो अपठित का अर्थ होता है, हम कह सकते हैं अपठित वह होता है जिसे विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा है, अर्थात ऐसा काव्यांश जो पहले नहीं पढ़ा गया हो अपठित काव्यांश कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपठित काव्यांश वह है एक कविता का ऐसा हिस्सा, एक कविता का ऐसा अंश जिसे विद्यार्थियों ने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है। तो अपठित का अर्थ इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अपठित का अर्थ हुआ एक कविता का ऐसा भाग या एक ऐसा हिस्सा जिसे विद्यार्थी अपनी निर्धारित हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पहले से नहीं पढ़ते हैं। या फिर इसको हम दूसरी तरह से इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसी काव्य पंक्तियां या कविता का ऐसा हिस्सा जिसे पहले नहीं पढ़ा गया हो अपठित काव्यांश कहलाता है। और ऐसा काव्यांश पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के बाहर से लिया गया होता है। तो ये तो हमने देखा कि अपठित काव्यांश क्या होता है, उसका अर्थ। अब हम आगे देखते हैं अपठित काव्यांश का उद्देश्य। अपठित काव्यांश का उद्देश्य क्या होता है? तो अपठित काव्यांश के उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे नंबर एक, इससे अपठित काव्यांश को पढ़ने से कविता की समझ बढ़ती है। फिर नंबर दो, दूसरा है कविता में छिपे अर्थ को जानने की योग्यता बढ़ती है और विद्यार्थियों के भाव ग्रहण की क्षमता का विकास होता है, भाषा का ज्ञान बढ़ता है और इसके साथ साथ रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची आदि का ज्ञान भी बढ़ता है, प्रतीक अर्थों की समझ बढ़ती है, विश्लेषण एवं अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। और हम कह सकते हैं कि अपठित काव्यांश को पढ़ने का उद्देश्य छात्रों की कल्पनाशीलता, एकाग्रता एवं संवेदनशीलता में इससे वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमने देखे अपठित काव्यांश के कई उद्देश्य होते हैं। अब आगे हम देखते हैं अपठित काव्यांश को कैसे समझा जाए। तो अपठित काव्यांश को समझने का तरीका है कि विद्यार्थियों को दिए गए अपठित काव्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए ताकि दिए गए अंश का मूल भाव और भावार्थ समझ में आ जाए। यदि कुछ अंशों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते हैं तो उन अंशों को एक बार पुनः एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं अपठित काव्यांश को जो है हल कैसे करना चाहिए। इसको हल करते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कई बातें हैं अपठित काव्यांश को हल करते समय हमें उनको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कह सकते हैं हम, नंबर एक, अपठित काव्यांश को 2-3 बार एकाग्र चित होकर ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद काव्यांश के कठिन शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। आगे फिर और कौन कौन सी जो बातें हैं ध्यान रखनी चाहिए हमें? कठिन शब्दों के अर्थ उनको भी जानने का प्रयास करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि काव्यांश को जो है उसको हल करते समय और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। काव्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर काव्यांश संबंधी तथ्यों से ही देना चाहिए, अपने मन से या काव्यांश से बाहर से नहीं। और वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर, यदि काव्यांश पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें क्या है, उस समय सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसी का चुनाव करना चाहिए। और यदि शीर्षक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो शीर्षक से संबंधित प्रश्न का चुनाव करते समय पूरे काव्यांश के मूल भाव को ध्यान में रखना चाहिए, एक दो पंक्तियों के आधार पर शीर्षक नहीं चुनना चाहिए। कभी कभी शीर्षक प्रारंभ की पंक्तियों में या अंतिम दो पंक्तियों में भी मिल जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि शीर्षक का चुनाव करते समय और कौन सी मुख्य बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। शीर्षक जो है संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो शीर्षक के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि शीर्षक कभी भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शीर्षक हमेशा जो है संक्षिप्त और आकर्षक होता है। आगे हम देखते हैं काव्यांश में निहित जो संदेश है उसको भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा अपठित काव्यांश को हल करते समय कई बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं अपठित काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछने का उद्देश्य हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं अपठित काव्यांश पर परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कई उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे दी गई कविता का विषय जो है उसे समझने की योग्यता का मूल्यांकन करना, कविता में छिपे हुए अर्थ को समझने की परख करना, काव्य पंक्तियों में दिए गए शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता की जांच करना, और जो काव्य है उसका जो मूल तथ्य है, जो मूल भाव है उसको उसको विद्यार्थी ने कितना समझा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अपठित काव्यांश जो है उसको पढ़ने का जो है उद्देश्य, सॉरी, अपठित काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न है पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इससे अपठित काव्यांश के द्वारा विद्यार्थियों की जो भी भावानुभूति है, केंद्रीय भाव जो है अपठित गद्यांश का, उसको ग्रहण करने की क्षमता का तथा सौंदर्य बोध का विकास विद्यार्थियों में इससे होता है। और इससे छात्रों में काव्यगत विशेषताओं की बेहतर समझ के साथ साथ शिल्प सौंदर्य तथा भाव सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास भी होता है। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों को अपठित काव्यांश को पढ़ते समय कुछ विशेष बातें जो है ध्यान से रखनी चाहिए। तो सर्वप्रथम काव्यांश को पूरे मनोयोग से पढ़ना चाहिए। यदि कविता कठिन लगे तो उसे एक बार में समझ नहीं आ रही है तो उसे दो तीन बार पढ़ना चाहिए ताकि उसका अर्थ समझ आ जाए, और मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए, और काव्यांश पर आधारित पूछे गए जो प्रश्न है उनका उत्तर जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए, बहुत सावधानी से सोच विचार करके देना चाहिए। तो अपठित काव्यांश, ये तो हमने देख लिया आप अपठित काव्यांश को कैसे हल करते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है। अब हम एक अपठित काव्यांश उसका उदाहरण देखते हैं, इससे अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो अपठित काव्यांश यहाँ पर है, देखते हैं हम, जैसे अपठित काव्यांश इस प्रकार से है, मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु संग रंगीली, नीले नभ में बादल काले, हरियाली में सरसों पीली, यमुना तीर घाट गंगा के, तीर्थ तीर्थ में बांट छाव की, सदियों से चल रहे अनूठे ठाट गांव की, हाट गांव की, शहरों को गोदी में लेकर चली गांव की डगर नुकुली। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली। खड़ी खड़ी फुलवारी फूले, हार पिरोए बैठ गुजरिया। बरसाए जलधार बदरिया, भीगे जग की हरी चदरिया। तृण पर शबनम, तरु पर जुगनू, नीड रचाएं तीली तीली। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली। घास फूस की खड़ी झोंपड़ी, लाज संभाले जीवन भर की। कुटिया में मिट्टी के दीपक, मंदिर में प्रतिमा पत्थर की। जहां बांस कंकड़ में हरिका, वहां नदी चांदी चमकीली। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली। तो ये काव्यांश हमने देखा, और इस काव्यांश में जो है कवि ने हमारे देश में जो विशेषताएं हैं, ऋतुएं हैं, और यहाँ की जो भी प्राकृतिक सौंदर्य है, यमुना नदी, गंगा नदी, और गांव के बारे में, और ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में इस काव्यांश में बताया गया है कवि ने। तो इसमें से हम अब देखते हैं कि इस पर आधारित प्रश्न जो है, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो इस पर आधारित कई प्रश्न हैं, वो इस प्रकार से हैं। नंबर एक, पहला प्रश्न, कवि को अपना देश कैसा प्रतीत होता है? और इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है गर्वीला, दूसरा है भड़कीला, तीसरा विकल्प है चमकीला, और चौथा विकल्प है हठीला। तो इसमें जो पहला विकल्प है गर्वीला, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये उत्तर पहली ही पंक्ति में आ रहा है, और कई बार भी जो है ये पंक्ति बार बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है, और इसमें यही आ रहा है, मेरा देश बड़ा गर्वीला। तो इसका सही उत्तर जो है पहला विकल्प होगा। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, हार पिरोने का काम कौन कर रही है? अब इसमें पहला विकल्प है चदरिया, गुजरिया, हरिया, और चौथा विकल्प है भरिया। तो इसमें से अब हमें सही उत्तर कैसे कौन सा होगा, तो इसमें ये पंक्ति हमें देखनी है, और ये पंक्ति भी यहाँ पर आई है, ये देखिए यहाँ पर आई है, खड़ी खड़ी फुलवारी फूले, हार पिरोए बैठ गुजरिया। तो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें दूसरा विकल्प, गुजरिया। फिर आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं, शबनम किसे कहा गया है और वह कहाँ पर है? तो इसमें पहला विकल्प है नाम है, शबनम क्या है, नाम पहला विकल्प है, इसमें नाम है और तरु पर। दूसरा विकल्प है शराब है और नीर पर। तीसरा विकल्प है ओस की बूंदे और घास पर, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें से हमें सही उत्तर देखना है कौन सा होगा, तो इसमें से जो है हमारा सही उत्तर होगा, इसमें दिया हुआ है ये तीसरा विकल्प, क्योंकि ये पंक्ति भी जो है यहाँ पर आई है, यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं ये पंक्ति यहाँ पर है, जैसे तृण पर शबनम, तरु पर जुगनू। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, ओस की बूंदे हैं उन और वो घास पर हैं। शबनम ओस की बूंदों को कहा गया और वो कहाँ पर हैं, घास पर। तो इसमें हमारा सही उत्तर तीसरा विकल्प होगा। आगे हम चौथा प्रश्न देखते हैं, घास फूस की झोंपड़ी में क्या संभाला हुआ है? पहला विकल्प है बर्तन, दूसरे कपड़े, तीसरा चारपाई, और चौथा है घर की इज्जत। तो यहाँ पर जो है इसमें हमारा सही उत्तर होगा चौथा विकल्प, क्योंकि ये भी पंक्ति में आया है यहाँ पर, इसमें घास फूस की खड़ी झोंपड़ी, लाज संभाले जीवन भर की। तो यहाँ पर जो है घर की इज्जत चौथा विकल्प इसके अनुसार सही उत्तर होगा। फिर आगे पांचवा प्रश्न देखते हैं, ईश्वर का वास कहाँ बताया गया है? पहला विकल्प है पत्थर में, दूसरा घर में, तीसरा आंगन में, और चौथा विकल्प है खेत में। तो इसमें से जो है अब हमें देखना है कि हमारा सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें हम पंक्ति देखते हैं कहाँ पर ये जो है आई है, जहां बास कंकड़ में हरिका। तो ये पंक्ति यहाँ पर आई है, तो कंकड़ पत्थर ये नाम भी हमने सुने हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प, पत्थर में। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये एक अपठित काव्यांश हमने देखा, और इस पर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं ये हमने देखा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा जो हमारा अपठित काव्यांश जो विषय है उससे संबंधित अपठित का अर्थ क्या होता है, और यदि अपठित काव्यांश का उद्देश्य क्या होता है, अपठित काव्यांश को हल करने के लिए उससे संबंधित कौन कौन सी बातों का हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, और अपठित काव्यांश एक उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि उस पर आधारित जो प्रश्न यदि विकल्प वाले हैं, विकल्प दिए जाते हैं, तो उनको हमें कैसे हल करना चाहिए और कैसे उनका उत्तर देना चाहिए, और यदि विकल्प नहीं आता है, एक पंक्ति में प्रश्न पूछा जाता है, शीर्षक से संबंधित प्रश्न है, कभी जो है उसमें किसी शब्द का विलोम पद पूछ लिया जाता है, किसी का पर्यायवाची पूछ लिया जाता है किसी शब्द का, यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तब भी हमें पहले उस काव्यांश में देखना चाहिए कौन सा शब्द है, इसका विलोम पद क्या हो सकता है, वो सोचना चाहिए, और जो पर्यायवाची यदि पूछा गया है, कभी जो है उपसर्ग पूछ लिया जाता है किसी शब्द में, मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, कभी प्रत्यय वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये शब्द दिया है काव्यांश में से इसमें मूल शब्द क्या होगा, प्रत्यय क्या होगा, तो इस प्रकार से जो हमें ध्यान पूर्वक और जो प्रश्न पूछा गया है उसको समझना चाहिए और उसके बाद ही उसका उत्तर देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा इसमें हमारा जो विषय है अपठित काव्यांश का, उसका अर्थ, उसका उद्देश्य, उसको हल करने का तरीका और उससे संबंधित कौन कौन सी बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए।